वेद और शिवांशा के बीच हल्की नोकझोंक हो गई थी, जिसके बाद शिवांशा वेद से नाराज होकर बैठी थी। इस दौरान जब वे दोनों नाश्ते के लिए नीचे आए, तब उन्होंने नव्यांशी और रोहन को देखा। नव्यांशी और अरमान की सगाई परसों ही होने वाली थी, ऐसे में उनके पास सिर्फ कल का समय था जब सगाई की तैयारी करनी थी। नव्यांशी अपने साथ रोहन को लेकर आ तो गई थी, पर उसे वेद का डर भी लग रहा था। रोहन की सिक्योरिटी के लिए उसे उदयपुर से दूर भेजा गया था। उसे डर था कि कहीं वेद उसे इस बात के लिए डांट ना दे। शिवांशा के मन में भी यही चल रहा था, पर वेद ने कुछ नहीं कहा। वो किसी काम का बहाना बनाकर बाहर चला गया था। शिवांशा को उससे बात करने और बेवजह नाराज होने पर माफ़ी मांगने तक का मौका नहीं मिला। शिवांशा खोई हुई निगाहों से दरवाजे की तरफ देख रही थी, तभी नव्यांशी ने उससे कहा, भाभी आप पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए और थोड़ा टाइम रोहन के साथ बिता लीजिए, तब तक डिज़ाइनर आ जाएगी, मैं आराध्या भाभी के साथ हूँ। शिवांशा और रोहन को साथ में छोड़कर नव्यांशी आराध्या के साथ वहाँ से चली गई थी, जबकि वंश अक्षत को लेकर एंगेजमेंट वेन्यू पर गया था। उनके जाते ही जब रोहन और शिवांशा अकेले हुए, तब शिवांशा ने रोहन को अपने गले से लगा लिया था। वो प्यार से उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, कैसे हो तुम, अरमान भाई को ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना तुमने? बिल्कुल नहीं दीदी, रोहन ने उससे अलग होकर कहा। शिवांशा और रोहन के लिए यही काफ़ी था कि अरमान रोहन को अपने साथ रख रहा था। जब शिवांशा अरमान के साथ रहती थी, तब वो किसी तरह की डिमांड नहीं करती थी और उल्टा उसके काम में मदद करने की कोशिश ही करती रहती थी। मनन को भी पूरी तरह वो संभालती थी। उसी तरह रोहन ने भी कभी अरमान की मुश्किलें नहीं बढ़ाईं। वैसे तो शिवांशा जानती थी कि रोहन काफ़ी शांत और समझदार बच्चा है। उसके बिना कहे ही वो अरमान के यहाँ अच्छे से रह रहा था। दैट्स लाइक माई गुड बॉय, जब पुलिस केस और बाकी सारी चीज़ें निपट जाएंगी, तब मैं तुम्हारा एडमिशन किसी हॉस्टल में करवा दूंगी, शिवांशा बोली। वो नहीं चाहती थी कि नव्यांशी और अरमान की शादी के बाद रोहन को उन्हें संभालना पड़े। मैं आपको बोलने ही वाला था, अरमान भैया के ऊपर पहले ही मनन भैया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऐसे में मैं नहीं चाहता कि वो मेरा भी ध्यान रखें। अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, बस कुछ सालों की बात है, फिर कोई अच्छी जॉब मिलने पर अकेले सब हैंडल कर लूँगा। आप भी सेटल हो गई है तो मुझे कोई चिंता नहीं है, रोहन ने मुस्कुरा कर कहा। वो सिर्फ 14 साल का था और बात ऐसे कर रहा था जैसे कोई समझदार बड़ा आदमी हो। उसकी बातें सुनकर शिवांशा ने उसके गाल को खींचा और कहा, बच्चे हो तो बच्चे बनकर रहो, और तुम्हें सब कुछ हैंडल करने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ये बात अलग है कि मैं तुम्हें अपने साथ इस घर में नहीं रख सकती हूँ, पर मैंने भी फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है। देखना, एजुकेशन पूरी होने के बाद मैं वेद की कंपनी में काम करूँगी और मुझे जो सैलरी मिलेगी उससे तुम्हें अच्छी लाइफ दूंगी। फिर तो मुझे आपकी नौकरी लगने का इंतज़ार ज़्यादा रहेगा, रोहन ने कंधे उचकाकर कहा। इससे पहले कि शिवांशा कोई और बात छेड़ती, रोहन जल्दी से बोल पड़ा, अच्छा बातें बाद में, मैंने सुना आपने खाना नहीं खाया और इतना लेट हो गया है, आप अभी भी उतनी लापरवाह हो ना? पहले की बात अलग थी, लेकिन अब आप अपने घर में हो, अब क्यों आप अपना ख्याल नहीं रखती? क्योंकि मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारी जीजू हैं, शिवांशा ने मुस्कुराकर कहा और रोहन के साथ डाइनिंग टेबल पर आ गई थी। रोहन पहले ही ब्रेकफास्ट कर चुका था, लेकिन फिर भी शिवांशा उसे ज़बरदस्ती अपने साथ एक दो बाइट खिला रही थी। इस बीच रोहन की नज़र बाहर की तरफ गई। बारिश के बाद मौसम काफ़ी ठंडा और सुहावना हो गया था। आज तो आपकी फेवरेट बारिश भी आई थी और मैं भी आया हूँ, अब आप आराम से बारिश एंजॉय कर सकती हैं, क्योंकि आपको ये डर नहीं रहेगा कि बारिश में भीगने के बाद अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपका ध्यान कौन रखेगा, रोहन ने हल्के लहजे में बोला, जिस पर शिवांशा का मुंह बन गया था। पहली बार वो बेफिक्र होकर बारिश एंजॉय करने का सोच रही थी और वेद ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। पहले शिवांशा को वो ये कहता था कि बारिश में भीगने के बाद अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो बेवजह अरमान को परेशानी होगी, और आज जब वो अपनी पुरानी जिंदगी और परेशानियों से आज़ाद थी तो वेद ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। शायद यही वजह थी कि इतनी छोटी सी बात पर शिवांशा वेद से नाराज हो गई थी। फिलहाल रोहन को टालने के लिए शिवांशा ने बस मुस्कुराकर हल्के से सिर हिला दिया था। शिवांशा और रोहन ब्रेकफास्ट करके फ्री हुए ही थे कि उतने में डिजाइनर आ गई थी। नव्यांशी ने उसे और रोहन को बुला लिया था, वही आराध्या के साथ मिलकर सबके कपड़े डिसाइड कर रही थी। वेद भैया के लिए कुछ ट्रेडिशनल लेते हैं और वंश भाई को वैसे भी इंडो वेस्टर्न पहनना पसंद है, और उस बंदर के लिए मैं कपड़े सिलेक्ट नहीं करने वाली हूँ, नव्यांशी बोली। वेद और वंश दोनों ही उसके चुने हुए कपड़ों को बिना किसी शिकायत के पहन लेते थे। बस यही सोचकर नव्यांशी ही घर के किसी भी फंक्शन में उनके कपड़े डिसाइड करती थी। कोई बात नहीं, तुम्हारे उस बंदर और मेरे प्यारे से देवर के लिए कपड़े मैं सिलेक्ट करूंगी, आराध्या ने हंसकर कहा। ओके, और रोहन के कपड़े भी मैं ही डिसाइड करूंगी, नव्यांशी ने रोहन की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा। रोहन हल्का सा हिचकिचा गया था, पर शिवांशा ने उसके हाथ को सहलाकर उसे सामान्य रहने का इशारा किया।
नव्यांशी ऐसी ही थी। अगर उसे किसी के साथ रिश्ता बनाने में दिक्कत होती थी तो वो उसे अपना नहीं पाती थी। उनकी हर छोटी बात में कमी निकालती थी और एक बार किसी से उसका रिश्ता जुड़ जाता था तो वो उसे पूरे दिल से निभाती थी। शिवांशा खुश थी कि वो नव्यांशी का दिल जल्दी नहीं जीत पाई, लेकिन रोहन ने इतने कम वक्त में नव्यांशी के साथ अच्छा रिश्ता बना लिया था। वेद, वंश, रोहन और अक्षत के लिए कपड़े डिसाइड करने के बाद नव्यांशी ने आराध्या और शिवांशा की तरफ देखा और कहा, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों भी मेरी सगाई में लहंगा पहने। बिल्कुल नहीं, आराध्या ने तुरंत मना कर दिया। तुम क्या चाहती हो कि हमें लोगों से ये सुनना है कि हमने ब्राइड को ओवरपावर कर दिया? मैंने साड़ी पहनने का ही सोचा है और मुझे इस बार मम्मी जी के कलेक्शन में से कुछ पहनना है। आराध्या को जब भी मौका मिलता था तब वो शोभा की पुरानी और हैवी साड़ी को पहनना पसंद करती थी। नव्यांशी ने उसके आगे जिद नहीं की, लेकिन उसने शिवांशा की तरफ पपी आइज से देखा और कहा, आप तो मेरी बात मानेंगी ना, मैं कलर सिलेक्शन में ध्यान रख लूंगी और कोई आपको नहीं कहेगा कि आपने लहंगा पहनकर मुझे ओवरपावर किया है, प्लीज। नव्यांशी इतने प्यार से रिक्वेस्ट कर रही थी तो शिवांशा ने भी हाँ में सिर हिला दिया था। कम से कम इस बार वो उसे लहंगा पहनने की ही रिक्वेस्ट कर रही थी, वरना पिछली बार तो उसने उसके लिए जो कपड़े सिलेक्ट किए थे उसके बाद वेद ने नव्यांशी को दिल्ली भेज दिया था, तो शिवांशा को कई दिन तक उस बात के लिए ताने मारे थे। थैंक यू सो मच, नव्यांशी खुश होकर बोली और फिर उसने आराध्या की तरफ देखकर कहा, आपका मम्मी की साड़ी पहनने का आइडिया भी मुझे अच्छा लगा। मैं अपने लहंगे पर मम्मी की कोई मैचिंग साड़ी कैरी करूंगी ताकि मुझे ऐसा लगेगा कि वो मेरे आसपास ही हैं। अच्छा आइडिया है, मैं कुछ अच्छी साड़ियाँ निकाल कर ले आती हूँ, तब तक तुम शिवांशा भाभी के लिए लहंगा डिसाइड करो, आराध्या बोली और ऊपर जाने लगी जहाँ शोभा की पुरानी साड़ियाँ रखी हुई थी। नव्यांशी और आराध्या ही सब कुछ डिसाइड कर रही थी, शिवांशा बस चुपचाप बैठकर हाँ या ना में सिर हिला रही थी। नव्यांशी शिवांशा के लिए कोई भी लहंगा डिसाइड करने से पहले उसे दिखा रही थी। जब तक आराध्या नीचे आई तब तक नव्यांशी ने शिवांशा के लिए पिंक और ग्रीन कलर का पेस्टल शेड्स का लहंगा डिसाइड कर लिया था जिसके साथ स्लीवलेस ब्लाउज था। हाँ, ये अच्छा लग रहा है और तुम्हें ओवर पावर भी नहीं करेगा, आराध्या ने जवाब दिया।
कुछ ही देर में उन सबके कपड़े डिसाइड हो गए थे, जहां नव्यांशी ने अपने लिए गोल्डन कलर का लहंगा और उसके साथ मैच करती हुई शोभा की मेहरून कलर की साड़ी ली थी। इस बीच वेद वहां पर पहुंच गया था। उसे देखते ही नव्यांशी ने आवाज लगाई, भाई प्लीज यहां आइए ना, देखिए मैंने आपके लिए और भाभी के लिए सगाई में पहनने के लिए ड्रेस डिसाइड की है, अगर आपको अच्छी ना लगे तो आप चेंज करवा सकते हैं। तुम्हें पता तो है कि हर बार तुम ही डिसाइड करती हो और वैसे भी मुझे ये सब नहीं समझ आता है, वेद ने गहरी सांस लेकर कहा। ठीक है, फिर कम से कम भाभी का ड्रेस तो देख लीजिए, नव्यांशी ने जिद करते हुए कहा और शिवांशा के लिए चुना हुआ लहंगा आगे कर दिया था। अच्छा है, वेद ने इतना ही कहा, तभी नव्यांशी ने आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा। उसने देखा वेद के हाथ पीछे की तरफ थे। नव्यांशी तुरंत बोली, और आप क्या छुपा रहे हो? कुछ भी तो नहीं, बस मेरा ही कुछ सामान है, वेद बोला। तो इस तरह छुपाने की क्या जरूरत है, नव्यांशी ने बेपरवाही से कहा और वेद के पीछे जाकर देखा तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग थे। नव्यांशी उन्हें देखकर जोर से हंस पड़ी थी जबकि वेद उसे घूर कर देख रहा था। नव्यांशी ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और कहा, सॉरी आपका सरप्राइज खराब कर दिया, पहले बताना चाहिए था ना कि आप भाभी के लिए अलग से कुछ लेकर आ रहे हैं। नव्यांशी की बात सुनकर शिवांशा भी वेद की तरफ हैरानी से देखने लगी, उसने खुद इसकी उम्मीद नहीं की थी। मैं किसी काम से गया था और मुझे अच्छा लगा तो ले लिया, वैसे तुमने जो ड्रेस सिलेक्ट की है वो ज्यादा अच्छी है तो शिवांशा वही पहनेगी, ये तो वैसे भी एक सिंपल सी साड़ी है, वेद ने हड़बड़ाकर कहा। ये साड़ी चाहे सिंपल सी ही क्यों ना हो लेकिन आप लेकर आए हो तो इसके पीछे आपकी इमोशंस छुपी हुई हैं। रुकिए, मुझे देखने दीजिए, नव्यांशी बोली और वेद की तरफ हाथ बढ़ाया। वेद ने भी अपने हाथ में पकड़ा कैरी बैग नव्यांशी को दे दिया था। नव्यांशी ने उसे खोलकर देखा तो उसमें बहुत ही खूबसूरत मजेंटा पिंक कलर की हैवी साड़ी थी जो वेद शिवांशा के लिए सगाई में पहनने के लिए ही लेकर आया था। सुबह ही उसने बहाना बनाया था कि उसके पास सगाई में पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। इसे आप सिंपल सी साड़ी बोलते हो, नव्यांशी उसे घूरते हुए बोली, ये बहुत खूबसूरत है और भाभी के ऊपर और भी अच्छी लगेगी, लहंगा वो किसी और फंक्शन में पहन लेंगी। इतना कहकर नव्यांशी ने साड़ी को शिवांशा के हाथ में रख दिया था। शिवांशा को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, बस वो नम आंखों से वेद की तरफ देख रही थी। कोई यहाँ इमोशनल हो रहा है तो हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, वैसे हम नहीं जा सकते तो आप दोनों ही अपने रूम में चले जाइए, शिवांशा के चेहरे की तरफ देखकर नव्यांशी हंसकर बोली। वेद बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाने लगा जबकि नव्यांशी ने शिवांशा को जबरदस्ती वेद के पीछे भेज दिया था। उनके जाते ही नव्यांशी ने मुंह बनाकर आराध्या की तरफ देखा, जलन हो रही है ना, कई बार मुझे भी होती है, वंश बिल्कुल भी वेद भाई जैसा नहीं है, आराध्या बोली। अपने पति को आप संभालिए लेकिन मेरे पति को मैं भाई से ट्रेनिंग लेने के लिए जरूर कहूंगी, नव्यांशी ने जवाब दिया। रोहन वहां चुपचाप बैठा हुआ था, वो खुश था कि वेद शिवांशा की कितनी परवाह करता है, तो वहीं शिवांशा वेद के पीछे कमरे में पहुंच चुकी थी। जब वेद यहां से गया था तब शिवांशा उससे नाराज थी
और रोहन के आने के बाद वेद ने कुछ नहीं कहा तो वो अपने बर्ताव के लिए माफी भी मांगना चाहती थी। उसे ठीक से कुछ करने का मौका नहीं मिला क्योंकि वेद चला गया था, और अब जब वेद वापस आया था तब शिवांशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, उसे थैंक्स कहे या अपने बर्ताव के लिए माफी मांगे। कुछ भी बोलने के बजाय उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बच्चों की तरह सुबकते हुए रो रही थी जबकि वेद हैरानी से आंखें फाड़कर उसकी तरफ देख रहा था। नव्यांशी और आराध्या की तरह आपको भी वेद से जलन होती होगी ना, लेकिन इतने परफेक्ट हस्बैंड ज्यादातर सिर्फ कहानियों में ही मिलते हैं। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले चैप्टर पर मिलते हैं।